पुनर्जागरण काल में विज्ञान। पुनर्जागरण काल में दो क्रांतियां हुई। पहली क्रांति सांस्कृतिक थी, यह एक वास्तविक पुनर्जागरण था जिसके दौरान पुरातन परंपराओं की रमणीयता और महत्ता पुनः स्थापित हुई तथा जिसकी अभिव्यक्ति कला, स्थापत्य, साहित्य तथा ज्ञान के पुनरुत्थान में हुई। दूसरी क्रांति आर्थिक थी। यह क्रांति काली मृत्यु, प्लेग से उत्पन्न महामारी तथा निरंतर चलने वाले युद्धों से जनसंख्या में कमी और परंपरागत व्यापार मार्गों के बंद होने के कारण पैदा हुई। इसके फलस्वरूप वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ, नए समुद्री मार्गों का पता लगा तथा प्रौद्योगिकी और खनन उद्योग में प्रगति हुई। इन दो क्रांतियों की समसामयिकता ने ही नवीन वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। यद्यपि मानवतावादी पुनर्जागरण के फलस्वरूप डेमोक्रिट्स, आर्किमिडीज तथा अन्य यूनानी विद्वानों की वैज्ञानिक रचनाओं के प्रकाशन को प्रोत्साहन मिला, तथापि इसके फलस्वरूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण न हो सका। लेकिन नई प्रविधियों में दिलचस्पी के कारण इतिहास में पहली बार सिद्धांत का व्यवहार से तथा गणित का यांत्रिकी से संयोग हुआ। लियोनार्डो दा विंसी जैसे व्यक्ति की प्रतिभा भी पुनर्जागरण की इन प्रवृत्तियों का संयोजन हुआ। इन वर्षों में हुए विज्ञान के पुनर्जन्म की जड़ें तीन केंद्रों में देखने को मिलती हैं। पहले तथा सर्वाधिक विख्यात केंद्र को मानव एवं प्रकृति की खोज की संख्या दी जा सकती है की संज्ञा दी जा सकती है। यह खोज इटली में 15वीं शताब्दी में कला के क्षेत्र में हुए पुनर्जागरण की उपज थी, जिसमें कला अधिक यथार्थिक और जागृत हुई। कलाकारों ने नई समस्याएं उठाई और इनकी खोज में लग गए। वे दर्शन, दृष्टिमय जगत, शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान में रुचि लेते थे। लियोनार्डो ने चित्रकला को विज्ञान की संज्ञा दी। तीन विमाओं वाली आकृति को दो विमाओं में दर्शाने के लिए चित्रकार को ज्यामिति का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक था। साथ ही साथ दक्षिण जर्मनी के पर्वतीय क्षेत्र में, जिसका छोर न्यूरेमबर्ग तथा काको तक था, खनन उद्योग, धातु कर्म विज्ञान तथा व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई। यही धातु कर्म विज्ञान के सिद्धांत तथा व्यवहार पक्ष का विकास हुआ। यह क्षेत्र राइन द्वारा फ्लैंडर्स के समृद्ध बुनाई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। इसी व्यापार मार्ग पर गुटनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया। इस आविष्कार के बाद छपाई की मशीन का प्रयोग जल्दी ही अधिकाधिक स्थानों पर होने लगा और 15वीं शताब्दी के अंत तक प्रत्येक मुख्य नगर में छपाई की मशीन लग गई। सस्ती किताबों की उपलब्धता के फलस्वरूप संस्कृति और अध्ययन के क्षेत्र में परिवर्तन हुए। विज्ञान के क्षेत्र में छपाई मशीन की सहायता से टालमी तथा गैलेन की रचनाओं के संपूर्ण और विशुद्ध मूल पाठ उपलब्ध होने लगे। चित्रों की प्रतिकृतियां उपलब्ध होने लगीं और उनमें क्रमिक सुधार भी होने लगे। शास्त्रीय तथा आधुनिक रचनाओं के मूल पाठ के प्रसार के फलस्वरूप वैज्ञानिकों के ज्ञान में वृद्धि हुई और ऐसे अंतर्विरोधों पर भी निगाह गई जिनकी ओर मध्यकाल के कम पढ़े लिखे पाठकों का ध्यान नहीं गया था। इन्हीं वर्षों में स्पेन और पुर्तगाल ने अपनी खोजें आरंभ की। इथियोपिया में स्वर्ण की खोज में और पुराकथाओं में वर्णित क्रिश्चियन मोक प्रेस्टर जान का पता लगाने में पुर्तगाली नाविकों ने सारे अफ्रीकी तट की परिक्रमा कर डाली। इस प्रयत्न में उन्होंने भारत का समुद्री मार्ग खोज लिया। कोलंबस ने, जिसे स्पेन से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई, तथा स्पेन के विजेताओं ने नई दुनिया के द्वार खोल दिए। शुरू की खोज यात्राओं की सफलता के फलस्वरूप जहाज निर्माण तथा जहाजरानी की प्रगति हुई और जहाजों, कुतुब मीनार, मानचित्रों तथा अन्य उपकरणों की मांग बहुत बढ़ गई। पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस में जहाज चलाने की शिक्षा देने के लिए स्कूल खुल गए और लोग खगोल विद्या में अधिक रुचि लेने लगे। नक्षत्रों का अधिक सतर्कता से प्रेक्षण होने लगा और नक्षत्रों की स्थिति की अधिक विश्वसनीय सारणियों की आवश्यकता भी अनुभव की जाने लगी।